So we are starting with verse 62 today. I'll just read the first paragraph. Brahman itself pervades everything inside and outside, illuminating the entire world with the light of its consciousness. When my consciousness reaches the mind intellect, they perform their respective functions. But minus the association with the mind intellect, the light of my consciousness illuminates myself. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम ये तो बहुत बार आत्मबोध में अभी तक सुनते ही आ रहे हैं कि ब्रह्मा हर जगह है ना, परवेड्स एवरीथिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम जान सकते हैं या नहीं जान सकते, जो संसार में है, जो संसार में नहीं है, जो नोन है, अननोन है, ब्रह्म हर एक उसमें है। अगर किसी भी चीज़ का अस्तित्व है तो जानो कि उसके पीछे ब्रह्म है ही, ब्रह्म उसमें मिला ही हुआ है, अंदर हो या बाहर हो। और जब मेरी कॉन्शियसनेस, यहाँ पे मतलब वो जो ब्रह्म है, वो जो अवेयरनेस, जब मेरे मन और बुद्धि मर पहुँचता है, जब वो उसको परवेड करता है, उसको उसमें आता है, तब क्या होता है, तब मेरा मन और बुद्धि जो उनके काम है वो कर पाते हैं। तो हम ये जानते हैं कि बिना ब्रह्म के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी संभव ही नहीं है। तो मन और बुद्धि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उस माइंड और इंटेलेक्ट के एसोसिएशन को हटा दिया जाए, जब वो ब्रह्म मन और बुद्धि से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो जो कॉन्शियसनेस है वो मुझे ही लाइट कर रही है। यहाँ पे किसको लाइट अप कर रही है, मन और बुद्धि को, है ना। और जब वो मन और बुद्धि को नहीं कर रही, तब किसको कर रही है, देखो लास्ट लाइन में, द लाइट ऑफ माई कॉन्शियसनेस इल्यूमिनेट्स माई सेल्फ। अनदर वे दैट वी कैन पुट इट इज दैट इट इज देयर, इट इटसेल्फ इज इल्यूमिनेटिंग इटसेल्फ। हम इसको चाहे तो बोल सकते हैं कि मेरी अवेयरनेस मुझे रोशन प्रकाशित कर रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि वो खुद को ही प्रकाशित कर रहा है। तो मतलब वो तो प्रेजेंट है ही, अगर आप अवेयर नहीं हो तब भी वो प्रेजेंट है, अगर मन बुद्धि पे काम नहीं चल रहा है तब भी वो प्रेजेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, रात में हम सो रहे हैं, हमें किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं है, लेकिन ब्रह्म तो तब भी है ना। अगर मैं जानता हूँ, नहीं जानता, अवेयर हूँ, अवेयर नहीं हूँ, ब्रह्म हमेशा है, दैट इज़ द ट्रूथ। फिर वो कहते हैं कि जैसे एक स्ट्रीट में एक स्ट्रीट लैम्प होता है, हमें पता है कि जो भी रोड्स होती हैं स्ट्रीट लैम्प्स लगे होते हैं, वहाँ पे लाइट है। अब उस लाइट के नीचे, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे हो सकता है लोग ताश खेल रहे हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, है ना, हो सकता है कोई आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हो वहाँ बैठ के, या हो सकता है कोई अपना सब्जी वाला वहाँ पे नीचे सब्जी की ढेरी लगा के सब्जी बेच रहा हो कि वहाँ पे रोशनी आएगी तो लोग वहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। अब क्या लाइट को कोई फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे उसके नीचे क्या काम किया जा रहा है, उसको स्ट्रीट लाइट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रकाश दे रही है ना। कुछ भी करो, तुम जुआ खेलो, तुम पढ़ाई करो, तुम किसी का भला करो, चाहे तुम किसी का मर्डर करो वहाँ पे उसके नीचे, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो वो प्रकाश है वो हर किसी चीज़ से डिटैच्ड है बिल्कुल, है ना, और वो हर एक को, अगर वहाँ पे कोई मर्डर भी कर रहा है तो वो ये नहीं बोलेगी कि मैं अब यहाँ पे प्रकाश देना बंद कर दूंगी, मैं लाइट नहीं दूंगी क्योंकि तुम मर्डर कर रहे हो, वो उसको भी उतना ही लाइट देगी जितना अगर कोई किसी का भला कर रहा है या बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको देगा। तो वो क्या बता रहे हैं कि देखो, सही है या गलत है ये किसका काम है जानना, ये बुद्धि का काम है, ये आपकी बुद्धि बोलती है कि ये काम सही है और ये गलत है, लेकिन उस प्रकाश के लिए ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। ये बहुत समझने वाली बात है, उस प्रकाश के लिए कुछ भी गलत या सही नहीं है, है ना। फिर इन्होंने आगे एग्जांपल दिया है, जैसे एक छोटा बच्चा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कभी छोटे बच्चे, जैसे उन्होंने पॉटी किया और वो उसी में ही रम जाते हैं या उसी से खेलने लग जाते हैं, अपना हाथ मार के चारों तरफ लगा देते हैं, और माँ जो है वो देखेगी उसको, लेगा अरे अरे क्या सब गंदा किया, साफ़ करो, हटाओ करो, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चे के लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसको नहीं पता कि ये गंदी चीज़ है ना, वो करता है। तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं जब, क्योंकि अभी बुद्धि का उसमें विकास नहीं हुआ है, बुद्धि से हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब तक बुद्धि विकसित नहीं हुई है उनके लिए सब सही है। ऐसे ही जैसे अगर एक छोटा बच्चा माँ के साथ एक शॉप पे जाता है, उसको कोई चीज़ अच्छी लगी, उसको नहीं पता, वो उठा लेगा, तो माँ सिखाती है कि नहीं, कोई चीज़ नहीं उठानी है, ये उठाना गलत होता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये मेरा तेरा क्या होता है, या हम किसी और के घर गए हैं तो कोई चीज़ नहीं उठानी है। तो बच्चे को ऑनर या डिसग्रेस, क्या सही है क्या गलत है, नहीं मालूम है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हम बोलते हैं कि यू शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है आप जानो, ये किसका काम है, ये बुद्धि का काम है, इस चीज़ को बताना बुद्धि का काम है। लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे आपकी बुद्धि सही काम कर रही है या नहीं कर रही, बुद्धि आपकी विकसित है या नहीं है, जो ब्रह्म है वो आपको पूरा समय प्रकाश दे रहा है, वो हमेशा विद्यमान है। जैसे जो लाइट है वो स्ट्रीट लैम्प है, आपको रोशनी दे रहा है। आई इल्यूमिनेट्स द इंटेलेक्ट, राइट? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इंटेलेक्ट डज राइट एंड रॉन्ग, ये बिना सोचे हुए या बिना डिस्क्रिमिनेट किए बिना कि जो बुद्धि है वो सही कर रही है या गलत, आई इल्यूमिनेट द इंटेलेक्ट। आई कौन है यहाँ पे? टू इल्यूमिनेट मीन्स टू नो, आई नो द नोइंग ऑफ द इंटेलेक्ट, आई इज़ द ब्रह्म। क्योंकि बाद में क्यों क्या बताया जा रहा है, यही कि आप ही हो वो ब्रह्म, कोई अलग नहीं है, कोई और नहीं है, आप ही की रोशनी है, है ना? दैट इज़ वाई आई इज़ सेड टू बी द सेंशियंट, आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम द विटनेस, आई एम ब्रह्म। दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ बीइंग, द वन हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ दीज स्टेट्स इज जस्ट अ जीव, एंड द वन हु डजंट नो द जीव आइदर इज जस्ट अ बॉडी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ, मैं इस सब को जानने वाला हूँ कि बुद्धि सही कर रही है, बुद्धि गलत कर रही है, बुद्धि प्रकाशित हो रही है, मन प्रकाशित हो रहा है, मैं सिर्फ उसका साक्षी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये ही है। अगर आप ये नहीं जानते हो, अगर आप उस चेतना में अभी नहीं हो, तो मतलब जीव हो, और अगर आप इस जीव को भी नहीं जानते हो तो सिर्फ एक शरीर हो। अगर जीव का भी अभी आपको एहसास नहीं हुआ है, इतनी क्या बोलेंगे, संवेदनशीलता नहीं आई है, जीव को भी नहीं पहचानते हो, तो सिर्फ शरीर हो। फिर आगे इन्होंने इसको और एक्सप्लेन किया है, क्या बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग कैसे रहते हैं, सिर्फ शरीर की तरह, कैसे, खाओ पियो सो एन्जॉय करो, ज़्यादातर लोगों का यही आइडिया होता है ज़िंदगी जीने का, है ना? फिर पॉलीगेमी, मल्टीपल लिव इन रिलेशनशिप्स, एडल्ट्री, वो कह रहे हैं कोई ये बुरा वो नहीं कर रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये सोचो कि अगर तुम सिर्फ शरीर के जैसे जी रहे हो तो तुम में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर क्या करता है? जानवर भी तो सिर्फ खाता पीता सोता और रिप्रोडक्शन करता है, और तो कुछ भी नहीं कर रहा। अगर तुम भी अपनी पूरी ज़िंदगी यही काम करने में बिता रहे हो तो तुम में और जानवर में क्या फ़र्क है? और इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब हम चक्रास की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि मूलाधार, ये ज़्यादातर जो दुनिया है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मूलाधार केंद्रित हैं। मूलाधार केंद्रित का क्या मतलब हुआ कि वही फूड स्लीप सेक्स बेसिक्स, एकदम आपका जो बेसिक्स हैं बस वही काम, वो भी लोगों के पूरे नहीं होते, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना? तो उसको हम एनिमलिस्टिक टेंडेंसी बोलते हैं। अगर आपका सारा ध्यान उसी पे केंद्रित है, आप ज़िंदगी में वही कर रहे हो, तो उसको पशुवृत्ति बोला जाता है। इसको पशुवृत्ति बोलने का एक और रीज़न भी है, जो जानवर होते हैं उनमें भी चक्रास होते हैं, और जो जानवरों का हाइएस्ट चक्रा होता है वो कौन सा होता है? मूलाधार। तो जब वो मूलाधार उनका हाईएस्ट है, जब आप आते हो मनुष्य योनि में, तो आपका सबसे नीचे होता है, वहाँ से शुरू होता है, लेकिन आप मनुष्य बन के भी उससे ऊपर उठते ही नहीं हो, वहीं पे ही अटके रहते हो, तो आप पशु वृत्ति में ही माने जाओगे, है ना? यहीं पे वही बताया जा रहा है। फिर उन्होंने बोला कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने इसके बारे में बताया यहाँ पे, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि पहले क्या था कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, किसी के साथ भी आप यू नो मल्टीपल वुमेन मल्टीपल मेन, तो मैरिज का रिलेशनशिप क्यों बनाया गया, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन, कि आप एक के साथ ही रहो, एक के साथ रहो ताकि आप ये बहुत लोगों के पीछे भागो नहीं। और मैरिज को सिर्फ एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाई करने के लिए नहीं था, कि बल्कि ताकि आप दो लोग मिलके आगे की यात्रा कर सको, ऊपर की यात्रा कर सको, दैट वॉज द पर्पस। और अगर दो लोग अच्छे कंपेनियंस होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो फिर वो अच्छे से अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे, साथ में चल पाएंगे, सब कुछ करते हुए, सर्विस, चैरिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और अपने यू नो अवेकन द रियलिटी ऑफ द सेल्फ। मतलब मनुष्य जीवन क्यों मिला है, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा चक्र क्या है, सहस्रार, मूलाधार नहीं है, सहस्रार है, सहस्रार जहाँ पर खुद को जाना जाता है। तो अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आप दो लोग मिलके इस तरफ चल सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि आजकल के ज़माने में तो शादी को भी एक बॉन्डेज ही जैसे देखा जाता है, कि हम किसी को आंसर ना करना पड़े यंगस्टर्स में, और वो तो है ही, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है शादियों का चलना, क्योंकि हर कोई इतना इंडिपेंडेंट हो गया है, हर कोई मायने बदल गए हैं शादी के, है ना, तो वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ओनली द चेंज। पर वो यहाँ पे बस ये कह रही हैं कि अगर इफ़ इट इज़ ओनली सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, देन देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड एन एनिमल, है ना, तो मूलाधार की बात हो रही है यहाँ पे। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और एडवाइस भी दूसरों को ऐसा ही करते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो एन्जॉय करने के दिन हैं, अभी तो ज़िंदगी जीने के दिन है ना, सब करें, जब बुढ़ापा आएगा, रिटायर होगा, उसके बाद सत्संग भजन में जाएंगे, उसके बाद हम ये लोग कुछ करेंगे। वो कहते हैं ऐसा कभी होता ही नहीं है, है ना, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है, एक तो शरीर साथ नहीं देता, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, और तो भी आपने अगर ज़िंदगी भर, जब आपने अगर अपनी जवानी के दिनों में ये नहीं किया है, तो बुढ़ापे में करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कर भी नहीं पाते हैं लोग, है ना। तो ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है, और फिर बहुत मुश्किल भी हो जाता है बुढ़ापे में, अगर आपको गुरु मिल भी जाए, आपको वो प्रवचन सुनने को भी मिल जाए, तो भी अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है। सो फ्रॉम बीइंग अ बॉडी टू बीइंग अ जीव, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग। तो पहले क्या है, पहले तो आप शरीर से जीव बनिए, जीव, और फिर जीव से क्या बनना है, ब्रह्मन, आगे का जो रास्ता है उसमें। फिर आगे ये कहते हैं कि देखिए, आप किसी भी धर्म से आते हो, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है ना, चाहे किसी ने देखा है या नहीं है, ये तो मान्यता ही है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं, मान्यता यही है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। कोई बोलता है कि प्राण आगे कार्य करता है, कंटिन्यू करता है, कोई बोलता है आत्मा करती है, कोई बोलता है जीव करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो आत्मा है, जो इंडिविजुअल, जो भी आप हो, आपका एक इंडिविजुअल आत्मा है, और वो डेथ होने के बाद भी एग्जिस्ट करता है ना। इट इज़ ओनली अ हैंडफुल फ्यू हु गेट टू बी इन द कंपनी ऑफ एन एनलाइटेंड मास्टर। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज शी मीनिंग हियर बाय दिस। अच्छा, डज दे कम टू नो, ओके, तो वो जब एनलाइटेंड मास्टर को मिलते हैं, तब उन्हें पता लगता है, चाहे थ्योरेटिकली, कि वो भी जीव भी नहीं है, बल्कि आत्मन ही है। तो वो ये कह रहे हैं, पहले तो आप शरीर के जैसे ही रह रहे हो, है ना, शरीर बनकर ही रह रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना पीना सोना और रिप्रोडक्शन मज़े करना। फिर जब आप एक एनलाइटेंड मास्टर के उसमें आते हो, तब आपको क्या पता लगता है कि इससे ज़्यादा हो, एक जीव हो, और फिर आप ये रियलाइज़ करते हो कि जीव भी नहीं हो, बल्कि तुम आत्मन ही हो, तुम ही आत्मन हो और तुम ही ब्रह्मन हो, उससे भी आगे हो। सो फ्रॉम आई एम द बॉडी टू आई एम द जीव टू आई एम द आत्मन, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दैट यू आर नॉट ओनली द आत्मन बट यू आर द ब्रह्मन। जर्नी फ्रॉम आई एम द बॉडी टू आई एम ब्रह्मन इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी बाय एनी पैरामीटर, है ना। अगर हम देखेंगे अपने आसपास भी, अगर हम खुद को ही देखें, जब तक हम इस रास्ते पर नहीं आते, या जब तक कोई हमें चाहे कोई बुक पढ़ें या किसी से मिलें, तब तक हम यही मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, है ना, ऐसा ही मानते हैं। एक वो कहते हैं बुद्धि का जानना है कि ये आदमी है, ये कुर्सी है, ये लंबा है, ये क्या है, बुद्धि, द नोइंग इज़ द नोइंग ऑफ द इंटेलेक्ट, ये बुद्धि से जाना जाता है, ये हमने सीखा है। छोटा बच्चा भी बताएगा, है ना, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये मोबाइल फ़ोन है। बट द पावर थ्रू विच द इंटेलेक्ट फंक्शंस, द पावर थ्रू विच इंटेलेक्ट डिसर्न्स, इट इज़ द पावर ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस। माय नोइंग, द सेल्फ नोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नोइंग ऑफ द इंटेलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि बुद्धि से जानना एक चीज़ को अलग है और स्वयं से स्वयं को जानना बिल्कुल अलग है। ओके, जैसे रोशनी पड़ रही है जिसमें आपको कुर्सी नज़र आ रही है और आप बोल रहे हो ये कुर्सी है, लेकिन उस रोशनी का, रोशनी को खुद को जानना, स्वयं का स्वयं से स्वयं को जानना, वो एक बिल्कुल ही अलग बात है। तो हम जब तक उस चीज़ का अनुभव नहीं करते, तब तक ये मानो कि जो भी आप जान रहे हैं, अभी भी जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कौन जान रहा है, वो बुद्धि जान रही है, उसको बुद्धि से जाना जा रहा है, है ना। लेकिन बात क्या हो रही है, बुद्धि के बियॉन्ड जाने की, बुद्धि से जानने का नहीं। द सेल्फ नोज एवरीथिंग अबाउट द बॉडी, अबाउट द सेंसेस, अबाउट द माइंड इंटेलेक्ट। जो सेल्फ है, जो आत्मन है, जो ब्रह्मन है, वो ही शरीर को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है और मन बुद्धि को भी जानता है, क्योंकि मैं ही चैतन्य हूँ और मेरा एसेंस ही ज्ञान है, मेरा तत्व ही ज्ञान है। और जो इंटेलेक्ट है वो इनर्ट है, जो माइंड है वो इनर्ट है, इनर्ट मतलब जड़ है, हमारी बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, इंद्रियाँ जड़ है, शरीर जड़ है। ये बार बार वो चीज़ बताते हैं, इस चीज़ को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है दोबारा से, कि हमको ये शरीर एनिमेटेड सा दिख रहा है, ओके, तो हमें क्या लग रहा है, ये शरीर कर रहा है ना, ये हाथ शरीर ने हिलाया, लेकिन शरीर ने नहीं हिलाया, शरीर अपने आप में जड़ है। क्यों, अगर आप देखो एक मुर्दे का शरीर पड़ा हुआ है, वो हाथ नहीं हिला सकता, है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम सोच रहे हैं ये मुंह बोल रहा है, ये आवाज़ आ रही है, ये मन सोच रहा है या बुद्धि सोच रही है, नहीं, बुद्धि भी जड़ है, मन भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। बिना उस आत्मन के, बिना सेल्फ के, ये कुछ भी, कोई काम नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट करूँगी वो जो पहले एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी का। आपकी किचन में 50 तरह के गैजेट्स हैं, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक कुकर है, आपकी मिक्सी है, अवन है ना, लेकिन कितने भी वो सब के सब जड़ हैं, है कि नहीं। जब तक उनके पीछे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आपकी लाइट चली जाए, आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, और सारे गैजेट्स बेकार हैं, है कि नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल ऐसे ही आपका शरीर, मन, बुद्धि, हर चीज़ जड़ है। बिना उस सेल्फ के, बिना उस लाइट के, बिना उस इलेक्ट्रिसिटी के, वो काम नहीं कर सकते, है ना। When I am the self, I am the knower of everything, I get labeled as the witness. But when I am not involved in any knowing, then I am just the ever-conscious, ever-blissful, all-pervading, absolute existence. तो देखो, यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं सब कुछ जान रहा हूँ, then सब कुछ को विटनेस कर रहा हूँ, किसको, शरीर को, मन को, बुद्धि को, जितना भी चल रहा है, चाहे इस शरीर के अंदर या बाहर जो भी चल रहा है, तो मुझे क्या बोला जाता है कि मैं विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, जितने भी हम टर्म्स को यूज़ किया जाए। लेकिन जब मैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, न जानने में, तो क्या है, देन आई एम द एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, आई एम ब्रह्मन। तो यहाँ पे ब्रह्मन के दो रूप दिए गए हैं, एक जो ब्रह्मन अपने आप में है तो ब्रह्मन है, लेकिन जब वो जानने लगता है ब्रह्मन हर चीज़ को, तो वो साक्षी बन जाता है। अगर हम उसके और नीचे आ जाएं और बोलें, जब वो ब्रह्मन इस मन को चला रहा है तो वो मन बन जाता है ना, वही तो मन बना हुआ है। जब मैं बोलता हूँ कि मेरा मन, वो मन बन गया, वही जब इस शरीर को चलाता है तो वही शरीर बन जाता है। तो वो ही हर एक रूप में प्रकट है, और उसी के ही सब अलग रूप हैं, लेकिन वो बिना किसी रूपों के भी प्रकट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, है ना। जब वो शरीर नहीं चला रहा, मन नहीं चला रहा, बुद्धि नहीं चला रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ना वो साक्षी है, तब भी वो ब्रह्म है, तब भी वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे शंकराचार्य ने एक और पॉइंट लिया है, वो कहते हैं कि अगर तुम बोलते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर सब कुछ जड़ है, इफ़ एवरीथिंग इज़ इनर्ट, तो ये जड़ और चैतन्य का मिलन कैसे हो सकता है, हाउ कैन दे बी टुगेदर, राइट। एक जड़ है और एक चैतन्य है, तो ये एक साथ में कैसे मिल सकते हैं, हाउ कैन दे को एग्जिस्ट। तो फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से क्या दिया है, हमने जो पहले भी किया था, एक आयरन बॉल का, एक लोहे की गेंद का। लोहे की गेंद को अगर आप भट्टी में डाल दो, गरम आग की, है ना, तो वो क्या करेगा, उस आग को पूरा का पूरा वो भी गर्म हो जाएगी, है ना, उस आग को अपने अंदर ले लेगा, उसके अंदर आयरन में शक्ति है, है ना। सो इट बिकम्स हॉट लाइक द फायर एंड ग्लोज लाइक द फायर। फायर में जाने से पहले वो जो लोहे की गेंद है उसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही थी, लेकिन फायर में जाने के बाद वो भी लाल हो गई और ग्लो करने लगी, है ना। और जैसे हमें आग जला सकती है, अब वो जो फायर की, ये जो आयरन बॉल है, अगर हम इसको छुएंगे तो जल जाएंगे, है ना, वो भी उतनी गर्म हो चुकी है, तो हम उससे जल जाएंगे, आग भी जलाएगी और ये भी जलाएगी, है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मन, बुद्धि और शरीर, ये जड़ हैं, है ना, दे आर इनर्ट, लेकिन जैसे उस लोहे की गेंद ने उस पूरी गर्मी को, फायर की गर्मी को अपने अंदर ले लिया, ऐसे ही आए द सेंशिएंट सेल्फ, जो चैतन्य में है, उसके साथ आते ही, उसके समीप, उसके कांटेक्ट में आते ही, जो आपका शरीर है वो चलने लगता है, मन जो है वो सोचने लगता है, आपकी इंद्रियां देखने सुनने लगती हैं, सब कुछ काम करने लगता है, है ना। दे सीम सेंशिएंट, वो लग रहा है कि वो चैतन्य हैं, लेकिन वो चैतन्य नहीं है। कैसे, जैसे कि जो लोहे की गेंद है वो गर्म है लेकिन वो आग नहीं है, वो गर्म होते हुए भी आग नहीं है। गर्मी उस लोहे की गेंद का तत्व नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, वो उसका एसेंस नहीं है। सिर्फ जितनी देर उसमें हम आग देंगे वो गर्मी लेगी उस चीज़ को, लेकिन आप आग को हटा दो थोड़ी देर में वापस ठंडी हो जाएगी, है ना। मतलब वो उसका अपना नेचर नहीं है, वो अपने में वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जब तक हमें जो सेल्फ है, जो ब्रह्मन है, वो प्रकाश दे रहा है, तब तक ये मन, बुद्धि, शरीर, ये फुल एनिमेशन ऑफ दिस बॉडी चल रहा है, लेकिन अगर वो हटा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा गिर जाएगा, वहीं का वहीं ख़त्म, ये उसका तत्व नहीं है। ठीक है, proximity with the self enables the feeling of I know in the mind intellect, and so deeply does this sense of knowing pervade that even if it is the eyes that see, you believe you are seeing. But we know that for a dead body, the corpse, it cannot see, it cannot hear, it cannot taste, it cannot walk. So the missing link between a living and dead body is the power of pran. But I am the substratum of prana too, है ना। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या बोलते हैं कि प्राण निकल गए, प्राण छूट गए, हम बोलते हैं ना ऐसा। और यही डिफरेंस होता है एक मृत शरीर में और एक जिंदा शरीर में, कि जिंदा शरीर में प्राण है तो वो सब चल फिर रहा है, घूम रहा है, बातें कर रहा है, और प्राण निकल गए तो ख़त्म। तो वो कह रहे हैं लेकिन मैं जो हूँ, फिर से मैं कौन, आत्मन, ब्रह्मन, सेल्फ, है ना, मैं उस प्राण के भी पीछे हूँ, प्राण भी मेरी वजह से ही चल रहा है, प्राण की वजह से ये मन, बुद्धि, शरीर चल रहे हैं, और मेरी वजह से ये प्राण चल रहा है, मैं प्राणों के भी पीछे हूँ। तो उन्होंने एक एग्जांपल एक और यहाँ पे दिया है कि वही जो हमेशा बोलती है कि आँख देख रही है, कान सुन रहे हैं, लेकिन तुम बोलते हो मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, है ना। कि एक बार कुछ दो लोगों की लड़ाई हो गई होगी आपस में, तो इनके पास आए होंगे वो लेके, तो उन्होंने बोला अच्छा बताओ किसने बोला, किसने कटु वचन बोले, तो किसने बोले, टंग ने बोले, है ना, जीभ बोलती है कटु वचन, तो उन्होंने बोला किसने कटु वचन सुने, किसने सुने, कानों ने सुने, है ना। परेशान कौन हुआ, मन परेशान होता है ना। तो बोले सब तो जीभ कान और मन की लड़ाई है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। हमें सीखना क्या है यहाँ से, मतलब व्हाट इज़ द बॉटम लाइन। इतना सब वो जो हमें घोट घोट के पिला रहे हैं उसमें कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये शरीर मन और बुद्धि चल रहा है, लेकिन तुम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम जिसको मैं माने हुए बैठ गए हो, है ना। ऐसा है कि जैसे जब आग का उन्होंने जो एग्जांपल दिया कि आग है और आयरन की बॉल है, लोहे की गेंद है, तो आग ने जब लोहे की गेंद को गर्म हो गई तो वहाँ पे जो गर्मी है उसने लोहे की गेंद को आग ने मैं समझ लिया। लोहे की गेंद तो नहीं है ना आग, सिर्फ लोहे की गेंद गर्म हो गई है उसकी वजह से, लेकिन आग लोहे की गेंद नहीं है, है ना। ऐसे ही मैं जो हूँ, मेरी वजह से ये शरीर चल रहा है, ये मन चल रहा है, ये बुद्धि चल रही है, सारी वासनाएं आ रही हैं, कुछ ना कुछ सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। बॉटम लाइन यही है। कहते हैं जब मन खराब होता है तो तुम बोलते हो मैं खराब हो रहा हूँ, मतलब आई एम डिस्ट्रेस्ड, मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। डिस्टर्ब्ड कौन है? तुम्हारा मन। लेकिन तुमको लगता है कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे परेशानी है। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, जैसे उसको मैं छोटे में ही बताती हूँ। जैसे सपोज़ आप किसी लेटर से एक फॉरेनर को मिलते हो, लेट्स से चाइनीज़, ओके, और आपको चाइनीज़ नहीं आती, और अगर चाइनीज़ बंदा आपको चाइनीज़ में गालियाँ दे रहा हो, ठीक है, आपको पता पड़ेगा कि वो गालियाँ दे रहा है? नहीं पता पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, आपको लगेगा वो कुछ बोल रहा है, आपको नहीं पता वो गालियाँ दे रहा है ना। लेकिन अगर आपको कोई बताएगा कि आप एकदम ठीक नॉर्मल रहोगे, लेकिन जहाँ आपको पता लगेगा कि वो गालियाँ दे रहा है फिर आप गुस्सा हो जाओगे, है ना। गुस्सा कौन हो रहा है? मन, जिसने अब पता लगा, जिसको बुद्धि को अब पता लगा कि ये गालियाँ दे रहा है, है ना। जब तक नहीं पता था तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो क्या बता रही हैं इससे, कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ अ फैकल्टी ऑफ द माइंड। हमें पता है ना कि हमारा जो बुद्धि है और जो हमारा मन है, मतलब माइंड में यहाँ पे हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं, वो लैंग्वेज से चलता है। हमारे लिए शब्दों की बहुत इम्पॉर्टेंस है, जो बुद्धि के लिए। इट इज़ द इंटेलेक्ट दैट इंटरप्रेट्स वर्ड्स एंड डिसाइड्स हाउ टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। बट बिकॉज यू रिगार्ड योर सेल्फ एज द माइंड इंटेलेक्ट, यू फील अपसेट एंड कीप मोनिंग टू अदर्स, है ना। देखो फिर से बताती हूँ, किसी ने कुछ बोला, एक ऐसी लैंग्वेज में बोला जो आपको समझ में नहीं आया, और आपको बुरा भला बोला, तो आपको नहीं पता पड़ेगा। क्यों नहीं पता पड़ेगा? क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, आपको वो भाषा नहीं आती, आपकी इंटेलेक्ट में उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई है ना, तो वो नहीं पकड़ पाई। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ने उस भाषा को पकड़ लिया और आपको पता लगा कि किसी ने आपको बुरा भला बोला है, तो आपको क्या लगेगा कि मुझे ये बुरा भला बोला गया है कि नहीं। तो ये इंटेलेक्ट से है ना, जो चीज़ आपको समझ में आई तो आपको लगने लगा कि ये मुझे बोला गया है। तो वो कह रहे हैं कि तुम इसीलिए अपसेट हो क्योंकि तुम बुद्धि को मैं मान रहे हो, है ना। तो बुद्धि अपने हिसाब से, जो बुद्धि की ट्रेनिंग है उसके हिसाब से बुद्धि आपको इन्फॉर्मेशन देगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड हो, हमें पूरी बात पता भी ना हो, और कभी कभी हम वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो बुद्धि ने दी उसके हिसाब से हम एक एक्शन करने लग जाते हैं उसको मैं मान के। अभी आगे उन्होंने, खैर मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, एक और एग्जांपल दिया है, आश्रम में कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने फिर से कुछ लड़ाई हुई होगी, दैट्स ओके। हम आगे चलते हैं, मैं हूँ 250 पेज के थर्ड पैराग्राफ पे। इट इज़ द माइंड इंटेलेक्ट, इट इज़ द माइंड इंटेलेक्ट दैट रिएक्ट टू द इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। दिस नोइंग ऑफ द माइंड, दिस नोइंग ऑफ द इंटेलेक्ट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ। बट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द माइंड इंटेलेक्ट टू द सेंशियंट सेल्फ, वेन द माइंड इज अपसेट और हैप्पी, यू फील अपसेट और हैप्पी। वेन द माइंड इंटेलेक्ट इज शार्प और डल, यू फील स्मार्ट और स्टूपिड। तो आप अपने आप को किससे कनेक्ट कर रहे हो, किससे आपकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे है? इस बुद्धि के साथ आइडेंटिफिकेशन है, इस मन के साथ आइडेंटिफिकेशन है। और बार बार आत्मबोध का मेन पर्पस क्या है कि आपको ये याद दिलाना, और ये याद दिलाना ही है क्योंकि आप ऑलरेडी हो ही, आपने इसको मैं मान लिया है। जैसे कि मैंने ये जो ड्रेस पहना हुआ है, मैं इसको मैं मान लूँ, मैं सोचूँ ये मेरा शरीर ही है, मैं भूल जाऊँ कि ये मैंने शरीर के ऊपर पहना हुआ है ना, ये शरीर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमने इस शरीर, मन और बुद्धि को लिया हुआ है, लेकिन हम ये हैं नहीं। और आत्मबोध में यही आपको रियलाइज़ करना है। जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होती, जब तक हम इस मन, बुद्धि और शरीर के साथ ही आइडेंटिफाइड रहेंगे, तब तक ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो लास्ट पैराग्राफ में बोलती हैं, चाहे तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, एस्ट्रोनमर हो, फिजिसिस्ट हो, नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर, अगर तुम खुद को नहीं जानते, इफ़ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, योर इंटेलेक्ट इज़ इग्नोरेंट। क्यों? क्योंकि तुम जो साइंटिस्ट बने हो, किसके थ्रू बने हो? इंटेलेक्ट के थ्रू। तुम जो डॉक्टर बने हो, इंटेलेक्ट के थ्रू। तुम जो एस्ट्रोनोमर बने हो, इंटेलेक्ट के थ्रू। सब कुछ कौन, किसने जाना है? इंटेलेक्ट नहीं जाना है ना। अगर सपोज कोई बीमारी हो गई और इंटेलेक्ट ख़त्म, या आप सब कुछ भूल गए, इट इज़ ऑल गॉन, है ना, ये किसी काम का नहीं है। जब तक तुमने खुद को नहीं जाना, वो जो उस इंटेलेक्ट के पीछे है, सबसे बड़ा वही जानना है। इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, यू नो एवरी थिंग, बट इफ़ यू डोंट, ऑल द वर्ल्डली नॉलेज कम्स टू नो मोर देन जिल्च। योर इंटेलेक्ट इज इनर्ट, बट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सेल्फ, इट अपीयर्स सेंशियंट, है ना। फिर से वो यही बता रहे हैं, क्योंकि जैसे एक होता है ना कि देर इज़ अ लॉट ऑफ प्राइड इन बींग एन इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारी जो बुद्धि से हम जानते हैं, हम उसमें भी एक हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है कि हमें इतना कुछ पता है ना, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, या मेरी इतनी डिग्रीज हैं, या मैंने इतने ग्रंथ पढ़े हुए हैं, या मुझे ये पता है, वो पता है ना। तो वो जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको भी तोड़ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी को ही आप सब कुछ मान लेते हो। तो यहाँ पे वो बार बार शंकराचार्य, लेकिन उस झांसे में नहीं आएंगे, है ना। शंकराचार्य क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बुद्धि से कुछ ने भी बड़े हो जाओ, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, वो तुम्हें एक दिन गिराएगी ही, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आने वाली। यही चीज़ बार बार बताई जा रही है।